उच्चारण कर ले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता सूत्रम्। अथ समीक्षणाद् विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा। आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः। स फलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यान योग के द्वारा वो ज्ञान निष्ठा जिसके लिए सन्यास का विधान शास्त्र में किया गया है, उस ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। ध्यान योगेन सा कल हमने अध्यायों के विचारों में जो एक क्रम है, एक पारंपर्य है, उसका उपस्थापन किया। अर्जुन को विषाद होता है, विषाद से मुक्त होने के उपाय की वो जिज्ञासा करता है। दूसरे सूत्र में भगवान श्री कृष्ण की वाणी संग्रहित है, आत्मज्ञान से ही वो मुक्ति मिल सकती है। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? तो कहा कि आत्मज्ञान के लिए अधिकार अर्जन करना होता है। तीसरे अध्याय में योग्य बनो और आत्मज्ञान की योग्यता है अपने ही चित्त की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड। और ये शुद्धि कैसे होगी उसका भी वर्णन तीसरे में किया। कर्मयोग से अपने जो सारे कर्म हम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, उनको योग बनाया जाए तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सबसे कठिन जो साधना है वो ये चित्त की शुद्धि ही है। चित्त को शुद्ध कैसे करें भैया? शरीर की शुद्धि तो कर सकते हैं साबुन उबुन लगा करके। हालांकि हमारे पुराने महात्मा कहते हैं कि साबुन लगाने से शरीर स्वच्छ तो होता है, साफ होता है, शुद्ध नहीं होता। शुद्ध तो हमारा जल से मिट्टी से होता है। कपड़े को साफ कर सकते हैं, मन को कैसे साफ करें? मन तो दिखता भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आता, तो उसको वॉशिंग मशीन में कैसे डालें? कहा कि उसका उपाय है भैया, मन निरंतर कुछ ना कुछ कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा, मुख के द्वारा, दृष्टि के द्वारा। अगर इनकी करने को, मानी इनकी क्रियाओं को शुद्ध भाव से करने का प्रयत्न करो तो मन शुद्ध होगा, माने कर्म शुद्ध हो तो मन शुद्ध होगा। तो कर्म की शुद्धि क्या है? तो एक तो शास्त्र निषिद्धों को नहीं करना, वो तो सर्वथा अशुद्ध है। शास्त्र ने जो आपके लिए बताया है कर्तव्य, किसी को बोलते स्वधर्म, उसको करना, माने कर्म योग के तीन एलिमेंट है, सफलाशक्ति वर्जने न ईश्वरार्पणे न च स्वधर्मानुष्ठान। तो एक तो अपने कर्तव्यों को करना, स्वधर्म का अनुष्ठान करो, और उसमें भी अगर फल के लिए, स्वार्थ के लिए करते हो तो अशुद्ध हो जाता है। कर्तव्य करना अपने आप में एक अच्छा कर्म है, पवित्र कर्म है, इसलिए वो तो धर्म है। खाली कर्तव्य करने मात्र से कुछ ना कुछ शुद्धि आपको मिलती है, भले ही सकाम भाव से ही करो। अगर आपने अपने कर्तव्यों को किया, निषिद्धों को नहीं किया, तो इतने मात्र से आपको शुद्धि मिलेगी। इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है, शायद आपके लिए कोई नई बात हो, पता नहीं। उसमें ऐसा बताया कि जैसे मान लो आपने एक कर्म किया जिससे स्वर्ग में देवता बनोगे, स्वर्ग काम हो या ये था, स्वर्ग में जाने के लिए किया, तो ऐसे तो सकाम कर्म हुआ, लेकिन पहुंचोगे कहां? स्वर्ग में देवता बनोगे, देवता का शरीर मन मिलेगा, शुद्ध हुआ कि नहीं, मनुष्य से ऊपर उठे कि नहीं? शुद्ध हो गया। सकाम कर्म भी काम्यन्यपि आदधन्ति शुद्धि, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, और ये मीमांसा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। गीता जी में 18वें अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। यज्ञ दान तप ये पावन है, पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, लेकिन उस शुद्धि से उतने मात्र से ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मज्ञान के लिए उपयोगी जो शुद्धि है, उस प्रकार की शुद्धि नहीं होगी। शुद्धि तो होगी, चेतना परिष्कृत होगी, लेकिन वो भोगों में आसक्त रहेंगे, वहां जाकर के भी योग में नहीं, भले ही भोग दिव्य भोग हो, निम्न भोगों में उसकी रुचि नहीं होगी। तो स्वधर्म को करो, लेकिन फलाशक्ति वर्जने न, इसकी चर्चा अभी छठे अध्याय के प्रारंभ में भी आएगा। स्वार्थ से ऊपर उठ करके करो, लेकिन इतने मात्र से ही पूरी बात नहीं हुई, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा उस कर्मों के माध्यम से। ईश्वरार्पणी न, फलाशक्ति को छोड़ो, स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, और ईश्वर की पूजा अपने कर्मों के द्वारा करिए। ईश्वरार्पणेन, अथवा यूं कहे कि अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने लायक फूल पुष्प की तरह बनाओ और उनको दे दो उनके चरणों में, भगवान ये मैंने किया दिन भर। गीता जी का एक विशेष उपदेश है, आप अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हो बहुत अच्छी बात है, वो तो आगे उपदेश आएगा ही। भगवान को आपने अपने भीतर पाया इतने से नहीं चलेगा, भगवान को अपने कर्मों में आपको पाना होगा। और इसमें हम लोग बहुत कमजोर, आधा घंटा भगवान के लिए, दो घंटा ही भगवत चिंतन में तो हम फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि वो सही है, शास्त्र चिंतन किया, मन भगवान में पड़ा रहता है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं वहां पर भगवान कहीं भी नजर नहीं आते। ये बड़ी भारी कमी है हमारी, और वहां पर आप अगर ध्यान देंगे वहां पर भी भगवान सामने आपके होने चाहिए और कर्म सीधे उनकी पूजा बननी चाहिए। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। तो कर्म डिवाइन बन जाए, कर्म भगवान से उस दिव्य सत्ता से युक्त होने का एक माध्यम बन जाए, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, वो पूजा बन जाए, तो कर्म निश्चित रूप से शुद्ध होगा। और कर्म का शुद्ध होना ही हमारे चित्त की शुद्धि का कारण है, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कर्म योग जब आपने अच्छी तरह किया तब ज्ञान योग के लिए आप योग्य बन गए। ज्ञान योग क्या है? चौथे सूत्र में बताया, ततः गुरु सेवा श्रद्धा इंद्रिय जय और तत्परता। मुख्य रूप से तत्परता में ज्ञान के जो प्रधान साधन हैं वो है श्रवण मनन निधिध्यासन, इनमें निरंतर लगे रहना। अब व्यक्ति बिल्कुल फोकस्ड है, लेकिन बहुत सारे कर्तव्यों के बीच में अगर ये सब आप करते हैं तो पूरी तरह समर्पित आप नहीं हो पाएंगे। इसलिए पांचवें अध्याय में बताया गया, उसका नाम संन्यास योग, कि भैया संन्यास अब लेने का आपको अधिकार बन गया, अब आप संन्यास ले सकते हो। संन्यासः ज्ञान निष्ठार्थम। घर के झंझटों से भागने के लिए नहीं है, ज्ञान की निष्ठा बनाने के लिए संन्यास है। प्रायः हम लोगों के आजकल की संन्यास ऐसा ही होता है, भागो है ना। तो संन्यास के ऊपर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की। एक मैच्योरिटी, एक विशेष प्रकार का वैराग्य, डिटैचमेंट और उस ज्ञान की साधना में निरंतर डूब जाने के लिए जो एक व्याकुलता है, एक पैशन है, वो है संन्यास। तो इसलिए अपने कर्तव्यों को कम कर दो, छोड़ दो, कारणों से आपको संन्यास लेना है। तो संन्यास लेकर क्या करना है वो बता रहे हैं छठे अध्याय में ना। संन्यास लेकर के आपको ध्यान में डूबना है। ध्यान योगेन सा। अब इस सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान योगेन सा दो पद हैं इस सूत्र में। ध्यान योगेन इसका अर्थ होता है ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग के द्वारा और सा शब्द से पूर्व सूत्र में जो ज्ञान निष्ठा शब्द आई है उसकी अनुवृत्ति होगी इस सूत्र में। माने उसको यहां पर जोड़ना सा माने ओ ज्ञान निष्ठा। सा का अर्थ हो गया ज्ञान निष्ठा। ओ ज्ञान निष्ठा जिसके लिए आपने संन्यास लिया वो ज्ञान निष्ठा ध्यान योग के द्वारा बनेगी। ध्यान योग के द्वारा तो संन्यास लेकर ध्यान योग का अभ्यास करते हुए तब आपको वो ज्ञान निष्ठा बनती है। देखो सूत्रार्थ जो सुख पाठ्य में दिया है ना छठे अध्याय के अंत में है ना षष्ठ अनुध्यान उसमें है ध्यान योगेन सा सूत्रार्थ है ध्यान योग के द्वारा वो निष्ठा संपादित होती है। ये है 87 ध्यान योग के द्वारा वो निष्ठा संपादित होती है। आत्मज्ञान निष्ठा ध्यान योग के द्वारा संपादित होती है। तो ध्यान योग शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा और आत्मज्ञान की निष्ठा क्या है वो समझना होगा। बस तब ये सूत्रार्थ समझ लेंगे। ध्यान योग शब्द का पहले सरल अर्थ समझो। दो शब्द है ना जोड़ करके ध्यान योग ध्यान और योग। तो यहां पर ध्यानम एव योग ध्यान को ही योग बताया। जैसे कर्म योग में कर्म को ही योग बताया तो ये कर्म योग नहीं है ये है ध्यान योग। इस योग का रूप है ध्यान और ध्यान का अर्थ होता है चित्त का किसी एक लक्ष्य में निश्चल हो जाना। निश्चलता चित्त की अभी और विस्तार से हम समझेंगे उसका स्वरूप। तो इस प्रकार जो ध्यान रूप योग है जब आपका चित्त निश्चल हो जाए। असल में योग इसी का नाम है ध्यान का ही नाम निश्चलता का ही नाम योग है। पतंजलि का सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। इसका सरल अर्थ यही होता है चित्त वृत्ति माने चित्त की चंचलता। चित्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है मन आपका और उस वृत्ति का निरोध माने रुक देना। तो आपका चित्त निश्चल हो जाए इस निश्चलता का चित्त की निश्चलता का नाम योग हुआ। उसी को यहां पर ध्यान कह रहे हैं। ध्यान उस ध्यान का ही रूप है। तो इस प्रकार निश्चल चित्त के द्वारा वो आत्मज्ञान की निष्ठा प्राप्त की जा सकती है, बनाना पड़ेगा। अब इस सूत्र में पूरे षष्ठाध्याय का विषय संग्रहित हो गया। क्यों? आत्मज्ञान निष्ठा कैसी होती है वो भी वर्णन करना पड़ेगा, ध्यान का स्वरूप क्या है वो वर्णन, ध्यान योग का, ध्यान योग में अधिकारी कौन है, और ध्यान योग का साधन माने कैसे लगाया जाए ध्यान, और फिर ध्यान के साथ हमारे पूर्व साधना का क्या संबंध है, और ये किस प्रकार ज्ञान में परिणत हो जाता है। देखो ये जो छठे अध्याय है ना, इसमें कुल 47 श्लोक है, 47, और सुखपाठ्य में देखना विषय विभाग जो है ये 81 पन्ने पर है, 81। तो विषयों का विभाजन किया कि भगवान ने जो 47 श्लोक इस छठे अध्याय में बोले, जिसमें अर्जुन की भी उक्तियां हैं कुछ, तो इसके मुख्य मुख्य विषय क्या है, तो तीन श्लोक, प्रथम तीन श्लोक है योग का अधिकारी, ध्यान योग में डूबने का या ध्यान योग के अभ्यास करने का अधिकारी माने संन्यास लेकर के कौन है। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हम लोग तो घर में रहते हैं, संन्यास लिया नहीं, तो हम तो ध्यान करते हैं, और यहां पर तो संन्यास लेने के बाद ध्यान करने की बात आ रही है, तो आप ध्यान करिए और बल्कि करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहां पर उन साधकों का वर्णन है जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, एडवांस साधना ना, प्राइमरी कक्षा पार कर गए उसका वर्णन है, तो उनके लिए तो संन्यास पूर्वक ध्यान योग है। तो प्रथम तीन श्लोक में योग का अधिकारी, उसके बाद चौथे से नौ अर्थात छह श्लोक योगी का लक्षण बताया, योगी कौन है, जिस योग के अधिकारी आप बनना चाहते हो वो जो योगी हैं वो कैसे होते हैं, फिर आगे 10 से 17 माने 8 श्लोक में योग की तैयारियां, ध्यान योग की तैयारी कैसे हो, माने किस प्रकार के वातावरण में ध्यान हो, कैसा आसन हो, कैसे बैठें, क्या खाएं, कैसा व्यवहार करें, ये ध्यान योगी के लिए जो करना आवश्यक है वो तैयारियां बताएं। फिर इस ध्यान योग का स्वरूप, ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी साधना किस प्रकार की जाए और उसमें किस प्रकार की सिद्धि हमें मिलती है। तो योग का स्वरूप, साधना और सिद्धि, ये जो है 18वें श्लोक से 32वें श्लोक तक 15 श्लोक में बताया, और उसके बाद जो है 5 श्लोक है जिसमें अर्जुन का प्रश्न आ जाता है ना, चंचलम ही मन कृष्ण, तो मन को जीतने का उपाय, हालांकि इसको भी योग के स्वरूप उस विभाग में ही डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको अलग करके दिखाया इसलिए कि आपको प्रायः यही प्रश्न लोग पूछते हैं, तो उसको थोड़ा अलग महत्व देने के लिए बताया। तो 33 से 37 श्लोक तक मन को कैसे जीते ये भगवान ने उपदेश किया, और फिर आखिर के जो 11 श्लोक हैं उसमें योग अभ्यास करते करते साधक अगर मृत्यु के कारण हो या और किसी कारण हो भ्रष्ट हो जाते हैं, पूरा नहीं कर पाया, तो आगे की गति कैसी होगी उसकी। और फिर योग अभ्यास की जो महिमा है वो वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय को पूर्ण किया। तो इस प्रकार के विषयों का यह विभाजन है, 47 श्लोक तक ये वर्णन है। ध्यान योग का मुख्य जो फल है ये सूत्र में बताया कि जिसके लिए भगवान ने यहां योग की चर्चा की वो है ध्यान योगेन सा माने आत्मज्ञान की निष्ठा। और फिर हम लोग पहले निष्ठा से ही शुरू करें कि आत्मज्ञान की निष्ठा क्या है जिसके लिए योग भगवान ने उपदेश किया। देखो ये योग योग माने अब हम योग शब्द से ध्यान को ही कह रहे हैं, ठीक है ना। योग का ध्यान का इस समय भी थोड़ा क्रेज तो है और अच्छी बात है, नाना प्रकार की योग की प्रक्रिया है। एक तो क्रिया योग है बड़े प्रसिद्ध जो इस समय चल रहा है पूरी दुनिया में, हमारे भारतीय साधना है क्रिया योग। आजकल एक सुदर्शन क्रिया का भी बड़ा प्रसार हो रहा है, अपने रामदेव बाबा भी पतंजलि के योग का प्रचार कर रहे हैं। तो और भी नाना प्रकार एक सहज योग शायद आपने सुना हो, सहज योग, कुछ सिद्ध योग भी होता है, वही सहज योग का ही एक रूपांतर। अपने जो यहां पर आपके पास में थे ना नित्यानंद बाबा गणेशपुरी में, तो उनकी परंपरा में वो लोग सिद्ध योग बोलते हैं उसको। तो ये सब योग भिन्न भिन्न प्रकार के योग है, सब एक नहीं है लेकिन है सब योग। और निश्चित रूप से वो अभ्यासी को किसी ना किसी प्रकार से कल्याण ही कर रहा है। लेकिन यहां पर भगवान ने जो योग बताया उसको हम लोगों को समझना है, और उसको समझ लेंगे तो अन्य योगों से इसकी विशेषता भी आपको नजर आ जाएगा, इसके साथ उनका कैसा जुड़ाव है समन्वय है वो सब भी जिसको अनुसंधान करना है वो कर सकता है। लेकिन भगवान ने जिस योग का उपदेश किया उसका टारगेट क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी साधना क्या है, कौन इसको करे, ये सब बातें अगर हम समझ जाए तो मैं समझता हूं कि योग के बारे में एक प्रामाणिक अवधारणा आपकी बन जाएगी, और ये आवश्यक है क्योंकि योग के नाम पर कुछ माने फालतू चीजें भी चल जा रही है ना, तो इसलिए ये जरूरी है। एक कुंडलिनी योग होता है, शक्तिपात योग, वो भी अच्छी चीज है। तो भारत की भूमि ऐसी रही, यहां पर बहुत रिसर्च हुआ इस योग में ना, और इसके जो एक पथ बने हुए हैं साधकों की, एक परंपरा चली आ रही है नाना प्रकार की साधना की, तो इसमें कोई खराब चीज नहीं। आपने बड़े प्रसिद्ध रहे नाथ योगियों का, गोरखनाथ जी, उसमें हठ योग थोड़ा ज्यादा थे, लेकिन है, ये सब बड़े प्रामाणिक चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य से चल रहे हैं, गीता के विषाद से मुक्ति और वास्तविक मुक्ति का उपाय है आत्मज्ञान, उसके लिए जिस जो युग बहुत आवश्यक हैं उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। और योग के दार्शनिक रूप से वर्णन तो ऋषि पतंजलि ने कर दिया है, उसमें सारे अंगों का किसी न किसी रूप में उन्होंने समावेश किया है। उसकी चर्चा अगर गीता के अनुशीलन से आ जाता है तो हम करेंगे, आपको सुनाएंगे उसकी भी बात। तो यहां पर ध्यान योग के द्वारा वो आत्मज्ञान की निष्ठा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देख ले कि इस योगी का वास्तविक लक्ष्य क्या है, वो क्या पाना चाहता है, वो आत्मज्ञान निष्ठा वो कैसी है, तो उसका वर्णन भगवान ने किया 29वें श्लोक में। 29, 30, 31, 32 ये सब वही हैं। 29वें श्लोक है छठे अध्याय का, वो है आत्मज्ञान की निष्ठा। और आत्मज्ञान की निष्ठा से आपको मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। और यही बात माने आत्मज्ञान और मोक्ष, आत्मज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा ही, यही बात असल में ऋषि पतंजलि ने बताया कि ये योग का मुख्य फल है। इसलिए पतंजल योग दर्शन में चार पाद हैं, माने चार अध्याय समझ लीजिए। सबसे पहले समाधि पाद, समाधि ध्यान योग एक ही शब्द है, समाधि पाद, फिर साधन पाद, फिर विभूति पाद। ये योग के फल विभूति, नाना प्रकार की शक्तियां आपको मिलेंगे योगाभ्यास से, ध्यान से। और अंतिम पाद का नाम है कैवल्य पाद, माने मोक्ष, ठीक है ना। तो योग से आपके आंतरिक शक्ति का विकास होता है, नाना प्रकार की विभूतियां मिल सकती हैं आपको, उसी को शक्ति कहते हैं। जो चमत्कार होते हैं ना, बड़े सिद्ध महात्मा सब दिखाते रहे। अब भारत की भूमि तो ऐसी है कि अब इस युग में भी बहुत सारे डाउट्स है, फिर भी मन में कुछ हो सकता है, ऐसा हुआ होगा चमत्कार। मेरा कल में हम लोगों का बड़ा भारी है ना, और इससे जो है जनता कई बार बड़े धोखे खा जाते हैं। मैंने सच्ची मिराकल होती है, मेरे कहने का मतलब यह है। तो एक तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ सकता है, इसको विभूति बोलते हैं, जैसे आकाश गमन आदि बोलते हैं। दूसरा है कि आपको जानने की क्षमता बहुत विस्तृत हो जाती है, ज्ञान प्रज्ञा, जो इन आंखों से नहीं देख सकते सामान्य रूप से, वो सब देखना सुनना प्रत्यक्ष अनुभव करना, माने अतीन्द्रिय जो जगत है, उस अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश योग से होता है। जो हमारे इंद्रियां और कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं है, ऐसे सब संसार के जो बड़े विचित्र संसार है महाराज, तो उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। अपने पूर्व पूर्व जन्म की बात आप जान सकेंगे, भविष्य में कहां जा रहे हैं ये सब जान सकेंगे, ये व्यक्ति कहां से आया है, माने आपके ज्ञान की क्षमता का विस्तार हो जाता है। और इन सब चीजों से भी बड़ी चीज है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, अभी बता ही रहे हैं कि उसी के लिए तो असल में योग है, वो आपको मिल सकता है। और अंततः शांति, शांति छोटे से लेकर के मन थोड़े चित्त शांत हो गया, आराम राहत मिला, रिलैक्सेशन हुई, यहां से लेकर के मोक्ष तक जो परमा शांति है वहां तक ये योग के अभ्यास से मिलता है। और योग के अभ्यास से तत्काल ही कुछ ना कुछ आपको अगर ध्यान लग रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि आपके चित्त में कितनी शांति आ रही है। तो इसलिए चाहे अपने आंतर शक्ति को बढ़ाने के लिए हो, शारीरिक मानसिक इंद्रिय क्रियाएं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए हो, और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हो, जो संसार के पदार्थ नहीं दे सकता वो योग आपको दे सकता है। तो यहां पर मुख्य है आत्मज्ञान की निष्ठा, उसको 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, तो उसको हम लोग उच्चारण करेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्तात्मा ईक्षते, जिनका चित्त योग से युक्त हो गया, योग युक्तात्मा माने योग में वो स्थिर हो गए, युक्त हो गया, वो सर्वत्र समदर्शन करने वाला, सर्वत्र एक तत्व को देखने वाला बन जाता है। किस प्रकार देखता है वो, ईक्षते माने पश्यति, देखता है, कल्पना नहीं करता, वो देखता है। क्या देखता है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मानम ईक्षते, आत्मा को देखता है, आत्मा को देखता है। आत्मा को तो हम भी देख रहे हैं ना, माने आत्मा माने अपने आप को, तो अपने आप को हम अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मैं हूं, तो फिर इसके लिए इतने बड़े योग की क्या आवश्यकता है? आप सब लोग आत्मा को तो देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे? भैया अपने आप को जाने बिना और किसी चीज को जान ही नहीं सकते आप, तो आत्मा को तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। कहा कि देख तो रहे हैं लेकिन कैसे देख रहे हैं? आत्मानम देह स्थितम, इस देह के भीतर अथवा देह के रूप में ही देख रहे हैं कि यही मैं हूं। तो योग युक्तात्मा ऐसे आत्मा को नहीं देखता, ऐसे अपने आप को नहीं देखता है। वो कैसा देखता है? सर्वभूतस्थम, सब भूतों में, सब प्राणियों में, सबके भीतर स्थित अपने आप को देखता है। अब इनके दर्शन की महिमा आप समझ सकते हैं। वो एक शरीर के भीतर सीमित अपने आप को नहीं देखता, वो देखता क्या है और देख करके निश्चित रूप से बहुत बड़ा भारी आश्चर्य उनका होता होगा है। एकाएक मान लो आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मैं सबके भीतर हूं, कैसा लगेगा? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, महाराज बड़ा भारी आश्चर्य हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी ऐसा देखते हैं कि प्रत्येक शरीर के भीतर आत्माएं अलग अलग है और वो आत्माएं हमारे लिए अनात्मा है, माने दूसरा है। तो यहां पर योग युक्त आत्मा क्या देखते हैं, सब भूतों में सर्वभूतस्थम, माने सर्वभूतों में स्थित, सब में स्थित उस आत्मा को देखता है। भगवान शंकराचार्य जी के शब्द बड़े यहां पर आपको शायद अच्छा लगे और कुछ ज्यादा सुझे, कुछ स्फुरण आपको हो। सर्वभूतस्थम माने सर्वेषु भूतेषु स्थितम, सब प्राणियों में स्थित, कौन स्थित है? स्वम आत्मानम, स्वम माने स्वयं को, अपने आप को, ऐसा वो देखते हैं। तो इस शब्द के द्वारा ये कह रहे हैं कि आत्मा जो कि सब कुछ देखने वाला है ना, आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा कोई दृश्य पदार्थ नहीं है। आप तो दृष्टा है, आप तो अनुभव का केंद्र हैं, सब चीजों के बीच में आप बैठे हो और इसको देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, दिमाग से विचार कर रहे हो, सारे अनुभवों का केंद्र बिंदु आप हैं। अर्थात इसको दृष्टा शब्द से कहा जा सकता है, द नोअर, सब्जेक्ट भी कह सकते हो, विषयी, ठीक है ना। तो इस दृष्टा को देखना, यद्यपि किसी न किसी रूप में हम देख रहे हैं उसको, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, लेकिन दृश्यों से अलग करके उसको देखना, तब उसका सही रूप का दर्शन होगा। इसलिए वेदांत में और सांख्य प्रक्रिया में, सांख्य साधना में, भैया शरीर भी दृश्य है, इंद्रिय भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, और इन सब दृश्यों की, नाना प्रकार के दृश्यों के भीतर जो निरंतर अदृष्ट लेकिन सबको देखने वाला, जिसको जो दृश्य नहीं होता और जो सबको देखता है, इसको साक्षी भी बोलते हैं। साक्षी, तो इस साक्षी को जब हम देखते हैं विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, उसमें भी योग की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। खाली शब्द पढ़ लेने से ही नहीं होता है, थोड़े चित्त को उस डायरेक्शन में शब्दों के सहारे ले जाना पड़ता है। लेकिन वो जो साक्षी को आप देख रहे हैं, इसको वेदांत में त्वम पदार्थ बोलते हैं, मैं। लेकिन उस मैं को सब शरीरों में हम महसूस नहीं करते। अर्थात जब आपने कुछ साधना कर ली और देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने आप को अलग किया और उस अलगाव के बारे में आप सजग हैं, अनुभव है आपका, तब भी एक शरीर के भीतर परिच्छिन्न रूप में ही आप अनुभव करते हैं। इतना अलग करना बहुत बड़ी चीज है, इतने मात्र से ही आप बहुत सारी कठिनाइयों से आप बिल्कुल पार हो जाते हैं। लेकिन वेदांत आपको कहां ले जाना चाहता है, जो ज्ञान की सर्वोच्च भूमि है ना, वहां पहुंचाना है आपको। तो साक्षी को केवल एक देह इंद्रिय मन बुद्धि का साक्षी के रूप में देखना, ये अंतिम ज्ञान नहीं है। यही साक्षी सबके साक्षी के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है और सबको देखता है। ये जब पता होगा तब भगवान के शब्दों को आप अनुभव कर पाओगे, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब भूतों में स्थित अपने आप को, अर्थात वो सर्व साक्षी बन गया। वो ईश्वर सत्ता के किसी रूप को, बड़े रूप को पकड़ लिया, जो सब के भीतर बैठ करके देखने वाला। द्वासुपर्ण सजुजा सखाया, है ना, एक वृक्ष में दो पाखी हैं और दोनों पंक्षी में तो महाराज एक तो देखता है और एक भोगता है। तो वो देखने वाला जो दूसरा है ना, वो सबके भीतर देखता है ना, वो एक ही है सबके भीतर। एक लेडी मिली हमको बनारस की घाट पर, ये श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ, समय हो रहा है इसलिए इसको प्रसंहार कर रहा हूं। तो वो फ्रेंच लेडी थी, बुढ़िया थी और उनको बनारस से बड़ा प्रेम था। तो एक दिन हमारे से कुछ बात करने लगी, तो कई विषय की बात हुई। तो एक बात उन्होंने पूछा, मेरे मन में आया, असल में मैंने पूछा नहीं, मैंने सोचा कि ये वृद्धा महिला अकेली बनारस में क्या कर रही होगी पता नहीं, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तो वो बताने लगे अपने आप से, वो पढ़ाती थी और फिर कुछ रिसर्च किया एजुकेशन के ऊपर, अभी रिटायर्ड है। तो बता रही है कि स्वामी जी, लोग हमको पूछते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है। हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मैं ये कहती हूं, मुझे लगता है कि देखो, जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय एक खिड़की हमारे लिए खुली, और जब मृत्यु होगा वो खिड़की बंद हो जाएगा, और इस खिड़की के भीतर से हम इस सारी दुनिया को, नाना प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले क्या था पता नहीं और उसके बाद में क्या होगा ये भी पता नहीं। तो जितने भी इंसिडेंट घटी हमारे जीवन में, अंततः हमने उसको देखा। तो ये देखना ही हमारे जीवन का पर्पस है, जस्ट सीइंग। पहले तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगा, फिर मैंने कहा कि उनकी जो प्योरिटी देख करके मैंने बोला कि आप जो बात कह रहे हो एक प्रकार से हमारे शास्त्र में मिलता है। बोले कैसे, हमारे शास्त्र में एक दृष्टि है कि सब चीजों को साक्षी भाव से देखो, अर्थात उन इंसिडेंट से आप अपने आप को इन्वॉल्व न करो, जस्ट सीइंग, पासिंग, हर चीज जो है चली जा रही है। तो अगर इस ढंग से भी जीवन, ये भी एक जीवन तो हो ही सकता है, एक लक्ष्य तो हो ही सकता है। तो फिर उन्होंने जो दूसरा प्रश्न किया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और आपके लिए मैं प्रश्न वो देता हूं। कहा कि स्वामी जी, मैंने हमारे कोई फ्रेंड भी, इंडियन फ्रेंड, उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो जिंदगी में, तो कहते हैं कि महाराज ये हम लोग तो बिलीव करते कि इस डेथ के बाद फिर रिबर्थ, पुनर्जन्म होगा और फिर यही सब घटनाएं घटेगी, ये सब देखेंगे और फिर मरेंगे, फिर रोएंगे, तो इसलिए हमको ये जन्म बंद हो जाए हमारा। तो वो तो सुनकर के थोड़ी घबराती, अगर ऐसा कोई चांस है फिर दोबारा जन्म लेने का, और ये लोग सोचते कि ये बंद हो जाए, हम तो सोच रहे कि खिड़की बंद ना हो जाए, देखते रहें, और ये लोग कहते हैं कि हमको जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, माने जन्म नहीं चाहिए, पुनर्जन्म नहीं चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, मामोपेत तो कहते हैं पुनर्जन्म। तो क्या आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं क्या सचमुच पुनर्जन्म नहीं मांगते हो? क्यों भैया, फिर अंधेरे में रहोगे ये जन्म ही न हो, माने मुख्य चीज ये है कि हमारा देखना ही बंद हो जाए, क्या ये कोई लक्ष्य हो सकता है? मैंने क्या उत्तर उनको दिया वो कल बताऊंगा आज जो है, लेकिन तब तक आप लोग आज दिन भर सोचो कि क्या सचमुच हम ऐसा चाहते हैं। सूत्र का उच्चारण करते हैं, ध्यान योगे न सा, ध्यान योगे न सा, ध्यान योगे न सा। हरिओम तत्सत।